आवन चारे यमुना तीरावन चारे राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदना व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का। श्री विदुर उवाच सोऽयमद्य महायोगिन् भवता करुणात्मना दर्शितस्य असः पारो यत्र किंचन गोहरी। विदर उवाच सोयमद्यं महायोगिन् भवता करुणात्मना दर्शितस्यं सा पारो यत्र किंचन गोहरी। विदुर उवाच सोयमद्य महायोगिन् भवता करुणात्मना दर्शितस्यं सपारो यत्र किंचन गोहरिः। उवाच सोयमद्य महायोगिन् भवता करुणात्मनः। शब्दार्थ परिणाम विदुर उवाच।
विदुर ने कहा सः वह अयम यह आद्य आज महायोगिन् ये महायोगी भवता आपके द्वारा करुण आत्मना अत्यंत करुणा में दर्शित मुझे दिखाया गया है तमसः अंधकार का पार दूसरा छो यत्र जहाँ अकिंचन भौतिक रूप से युक्त व्यक्ति के द्वारा पहुंचने योग्य।
भगवान श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य और भाषांतर श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। श्री विदुर ने कहा हे परम योगी, हे भक्तों के महान, हे भक्तों में महान, आपने अहेतुकी कृपा से मुझे इस अंधकार रूपी संसार में मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है। इस भौतिक संसार में युक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से भगवान के धाम को वापस जा सकता है। तात्पर्य, यह भौतिक संसार तमा या अंधकार कहलाता है और आध्यात्मिक जगत प्रकाश कहलाता है। वेदों के आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार से निकलकर प्रकाश के साम्राज्य में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रकाश के साम्राज्य की जानकारी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के कृपा से प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं का परित्याग भी करना होता है। इस इच्छाओं के इच्छाओं से छुटकारा पाके ही तथा मुक्त पुरुष के संगति पाने में भगवत धाम जाने का मार्ग साफ हो जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोधीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृपया हम आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं कि हम कुछ श्री प्रभुपाद के इस सूत्र रूपी तात्पर्य को उसको हमारे जो जीवन से संबंधित चीजें है उससे जोड़कर उसको फुलाएं। तो जो भी वैष्णव दिख रहे हैं आगे जो निकन्नी दिख रहे हैं सभी वैष्णवों से हम वो हमको देख रहे हैं मगर हम उनको नहीं देख पा रहे तो सबका आशीर्वाद चाहते हैं। तो यहाँ पे विदुर जी अपना धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं उद्धव जी को कि उन्होंने उनको इतना सुंदर ज्ञान देके क्या किया एनलाइटन किया उनको उत्साह बढ़ाया उनका भक्ति करने का। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में छोटा सा ही तात्पर्य है मगर बड़ा मार्मिक तात्पर्य है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को अंधकार की जो दुनिया है ये यहां से बहुत उज्जवल जीवन की जो दुनिया है प्रकाशमान जीवन की जो दुनिया है भगवत धाम वहां पे जाना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है मनुष्य का उसको कैसे जाना चाहिए उसको भी बताते हैं। उसका जाने की शुरुआत चालू होती है जब वो किसी भक्त से अपना मुलाकात करता है। एक मुक्त जीव इस दुनिया में विचरण करता है बिना किसी इच्छा के। भागवतम लिखता है हजारों ऐसे मुक्त जीव होते हैं तो कृष्ण की इच्छा को लेकर चलते रहते हैं कहाँ जाना है क्या करना है कुछ पता नहीं रहता है उनको। तो लोग प्लान करके जितना नहीं कर सकते वो अनप्लान करके बहुत कुछ कर देते हैं ऐसे मुक्त जीव होते। तो मुक्त जीव ऐसे दुनिया में घूमते रहते हैं फिर वो बद्ध जीव उनके संपर्क में आ जाता है और उस दिन उसका रिटर्न जर्नी चालू होता है। उसको थोड़ा देर लगता है तो देर की भी कारण यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं व्यक्ति की हालांकि भगवान के भक्त को मिला है इसलिए अभी उसका भगवान के धाम वापस जाना निश्चित है। निश्चित है मतलब कि अभी वो ये नहीं है कि जाएगा कि नहीं जाएगा निश्चित जाएगा सिर्फ प्रश्न उठता है कि जाएगा कब और वो है उसके खुद के प्रयत्न के ऊपर। तो उसको क्या करना है भक्त ने अपना काम कर दिया है वो क्या करता है हम आज चर्चा करते वक्त कोशिश करेंगे समझने की। और फिर वो भक्त जो है जिस मिला है भक्त के साथ मुक्त जीव के साथ उसका संबंध आ गया है कहीं किसी ना किसी प्रकार से उस जीव को मिलने के बाद हमारा कर्तव्य होता है कि हम हमारे भौतिक इच्छाओं को नियमित रखें, कम करें और हो सकता है तो शून्य कर दें। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य का आखिरी जो सेंटेंस है उसको बहुत सुंदरता से प्रकटित करते हैं। वो बोलते हैं, एक शुद्ध जीव के मार्गदर्शन से और अपने खुद के भौतिक इच्छाओं को कम करके, सूत्र दिया है पूरा, बस बहुत सुंदर। अभी मैं एग्जैक्टली पढ़ नहीं रहा हूं, शायद पढ़ लेता हूं, बहुत अच्छा है। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं का परित्याग भी करना होता है। इस इच्छाओं से छुटकारा पाते ही तथा मुक्त पुरुष के संगति पाने से भगवत धाम जाने का मार्ग साफ हो जाता है। साफ हो जाता है का मतलब होता है उसका अंदर जो भी ऑब्स्टेकल है वो निकल जाता है। तो दो चीज करना आवश्यक है, मुक्त पुरुष के संगति और भौतिक जीवन, मुक्त पुरुष के संगति और भौतिक इच्छाओं का परित्याग। तो ये दो ही चीज करना है, कुछ ज्यादा बहुत बड़ा भगवत धाम जाना जितना कठिन है उतना आसान भी है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं हमें कि दो चीजों की आवश्यकता होती है मनुष्य को अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए। वो है अपनी खुद की एंडेवर, खुद का जो प्रयास है, खुद का जो कार्य है उसको करना है, और मुक्त पुरुष या कृपा, दोनों का समन्वय जहां पे होता है तब जीव उस दुनिया से मुक्त होता है। तो हमारे जीवन में एक चीज तो हो चुकी है ऑलरेडी कि हम भगवान के भक्तों के मुक्त पुरुष के संगति में आए हैं। हाँ, शिल प्रभुपाद के बहुत सारे बच्चे पोते सब शिल प्रभुपाद के, नेक्स्ट जनरेशन के ये सारे मुक्त जीव इस दुनिया में घूम कर करके विचरण कर करके प्रचार कर रहे हैं। उनके संपर्क में आने से हमारे अंदर भक्ति की भावना जागृत हो चुकी है, और ये मुक्त जीव हमारे ऊपर कृपा कर चुके हैं अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता के, शास्त्र के मर्म को बता के, हमें कैसे प्रगति करना चाहिए सब बता के वो अपना काम कर चुके हैं। अभी बचा है वो हमारा काम, बचा है क्या है वो, हमारे जीवन में आने वाले भौतिक इच्छाओं को हमें परित्याग करना पड़ेगा। एक चीज ऑलरेडी हो चुकी है, भगवत धाम जाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, उसमें से एक तो हो चुकी है। देखिए 50% काम बचा है, वो भी बहुत बड़ा काम है एक्चुअली। वो है कि हमारे भौतिक इच्छाओं का हम परित्याग करें। तो इच्छा करना ये मनुष्य का, किसी भी जीव का एक स्वभाव है, अंदरूनी स्वभाव है, इसको परित्याग नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति इच्छा रहित कभी हो नहीं सकता है। शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि एक पत्थर ही रहता है, उसका कोई इच्छा नहीं रहता है। बाकी हर एक छोटे से लेके बड़ा जीव तक, मुंह चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, किसी ना किसी प्रकार की इच्छाओं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों इच्छाओं के अंदर आदमी फंसा हुआ रहता है। तो इसको, भौतिक दुनिया को, संसार को समुंदर की तरह महाजाल माना है। संसार सागर है, सागर है, किस चीज का सागर है, इच्छाओं का सागर है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, बहुत सारी इच्छा। आज भी हम देखते हैं हमारे मन में कितने सारे इच्छा आती है। एक व्यक्ति मनुष्य के जीवन जीता है 60 साल 70 साल 80 100 जो भी है, उसमें जितने इच्छाएं करता है उसकी वजह से उसको लाखों लाखों जन्म तक पूरे इच्छाओं पूरा करने के लिए अलग अलग शरीरों में उसको जो है भाग लेना होता है। एक जीवन में इतनी इच्छाएं करता है। शास्त्रज्ञ लोग भी बोलते हैं कि मनुष्य के हृदय में मन में एक मिनट में करोड़ों इच्छाएं प्रकट होती है, ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वो खाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, ये देखना है, वो सुनना है, ये सुनना है। हाँ, इतना इच्छाएं होती है। भगवान जो भी हम आजू बाजू में देखते हैं सब हमको चाहिए। द प्रभुपाद क्या लिखते हैं उसको, मास्टर ऑफ ऑल दैट आई सर्वे, सब कुछ चाहिए, जितना भी मेरे आंखों के आगे दिख रहा है सब मेरे को चाहिए। ऐसे इच्छाएं करते बैठते हैं हम लोग, तो ये सारी इच्छाओं की वजह से आदमी व्यक्ति इस दुनिया में फंस जाता है। और क्या होता है जब वो भक्त को मिलता है तो क्या होता है, क्या ऐसा मैजिक होता है, तुलयामलवे नापि न स्वर्ग न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवत संगी भगवान का जो भक्त होता है वो कृष्ण की इच्छा से चलता है, या उसके सारे इच्छाओं को कृष्ण की सेवा में लगाता है, दोनों एक ही है। हाँ, यहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। वो सब लोग मुक्त है जो अपने मन से, शरीर से और अपने वाचा से भगवान की इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं, या अपने सारे इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा चुके हैं, दोनों में से एक जो भी बराबर है। तो इस तरह के व्यक्ति जब किसी जीव को, इस दुनिया के पति जीव जिसको पता नहीं क्या इच्छा करना चाहिए, कुछ भी इच्छा करता है, जैसे छोटा बच्चा होता है कुछ भी इच्छा करता है, चॉकलेट खाना चाहता है, पंखा में हाथ डालना चाहता है, आग को हाथ लगाना चाहता है कि नहीं, सब सांप को, चूहे को, छिपकली को पकड़ना चाहता है, ये तो अबोध बालक है, कुछ भी करना चाहता है। तो वैसे अबोध जीव है, कुछ भी करना चाहता है, उटपटांग चीजें करना चाहता है। अगर हम भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं करेंगे तो जरूर उल्टी सीधी इच्छाओं में जरूर फंस जाएंगे, ये नियम है। मन को खाली नहीं कर सकते हैं, मन को इच्छाओं से रिक्त नहीं कर सकते हैं, मन को सिर्फ और इच्छाओं से भर सकते हैं, भौतिक इच्छाओं से भर सकते हैं, आध्यात्मिक इच्छाओं से भर सकते हैं, दोनों के मिक्सचर खिचड़ी से भर सकते हैं, किसी से भी भर सकते हैं, मगर मन को किसी ना किसी इच्छाओं से भरना जरूर है, जरूरी है। तो मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है कि हमारे सारे मन के इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की सेवा करने की इच्छा से, भगवान की सेवा करने की इच्छाएं मन में रखें, तो मुक्ति का मार्ग, भगवत धाम जाने का मार्ग साफ हो जाता है, ऐसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो स्वल्पमपस्य नहीं, क्या बोलते, तुलयामलवेनापि, एक छोटा सा भी संपर्क भगवान के भक्तों के साथ में अपना आता है तो क्या होता है, वो भगवान का भक्त जो है वो एक बहुत विशिष्ट प्रकार का, अब भयंकर भी बोल सकते, भयंकर प्रकार का वायरस लेके घूमता है। और जिसके भी संपर्क में वो क्या है, सारा चीज भगवान के लिए करने का, कृष्ण कर्मार्पणे सवई मन कृष्ण पदारविंदयो त्वचांसि वैकुंठ गुणारुवरणे करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशु तद्भृत्य गात्रा स्पर्शांग संगम ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानु सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदानु वंदने कामम च दासे न तु काम कामया। कोई भी और इच्छा नहीं करता है, क्या इच्छा करता है, कैसे ना कैसे मेरे सारे जो चीजें हैं ग्रॉस और या सटल जो भी है, मन है, बुद्धि, अहंकार है, इच्छा है, ये सब सूक्ष्म चीजें हैं, और हाथ पैर नाक कान आंखें ये सब चीजें ग्रॉस स्थूल चीजें हैं, ये सभी को कायेन वाचा मनसे इंद्रियैवा बुद्ध्यात्मनाभा प्रकृति स्वभाव करोम यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। सब कुछ मैं जो भी करूंगा भगवान के लिए करूंगा। इस प्रकार का ये जो बहुत विशिष्ट प्रकार का एक गुण है, शुद्ध भक्तों के बहुत सारे गुणों के अंदर कृष्ण एक शरणम, इस गुणों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, बाकी हो या ना हो उसका जीवन, उसका मन, उसका वाचा कम से कम भगवान की सेवा में लगने की इच्छाओं से प्रेरित होनी चाहिए, तब जाके ये जो सी इच्छाएं हैं, अलग अलग इच्छाएं आती है मन में, वो चले जाते हैं। तो ये जो भगवान के साथ, भक्तों के साथ जो संपर्क होता है, उससे व्यक्ति भगवान के लिए इच्छा करने की शुरुआत करता है, इसलिए वो कंटेजियस डिसीज है। उनसे बहुत, अगर किसी को ये नहीं चाहिए तो बहुत दूर रहना चाहिए उनसे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए भक्तों के साथ। अगर किसी को आपने ये वायरस तो बहुत भयंकर है, ये वायरस लॉकडाउन में भी बढ़ते रहता है, आप बंद करो उसको, एक भक्त को उसकी भक्ति बढ़ती रहती है, फॉल डाउन में भी बढ़ता है, लॉकडाउन में भी बढ़ता है, अप एंड डाउन कुछ भी करो उसको, वो बढ़ते ही रहता है, आप उसको अभी रोक नहीं सकते हो। एक ही चीज है रोकने के लिए कि हाथी मत लगाओ, नहीं तो गया थुलया मलवे नापी को कोई वो नहीं कर सकता है, बंद नहीं कर सकता है इसको। आज तक शास्त्र में कितने सारे लोग देखे हैं, पापी लोग देखे हैं भक्तों के संपर्क में आके भक्त बन गए, कर्मी लोग देखे हैं भक्तों के संपर्क में आके भक्त बने हैं, पायस लोग देखे हैं, पवित्र लोग देखे हैं भक्तों के साथ संपर्क में आके भक्त बने, ज्ञानी लोग देखे हैं भक्तों के साथ संपर्क में आके भक्त बने हैं, मुक्त लोग देखे हैं वो भक्तों के साथ, तो किसी को छोड़ता नहीं है, वो छोड़ता नहीं मतलब जानबूझ के नहीं करता है, उसका वही वो एक अंदरूनी है, उसका एक नैसर्गिक वो चीज होता है कि वो जिसको भी देखेंगे वो भक्तों के सेवा में, भगवान की सेवा में उसको लगा ही देता है कैसे ना कैसे करके। हमारे जैनपुरों के बारे में बताते हैं, और लोगों को बातें करते रहते थे, अब एक खिला मारो, ये बर्तन उठाओ, ये करो वो करो, और इतने छोटी चीज से वो भक्त बाद में एक महान भक्त बन जाता था, बड़ा आदमी बन जाता था हमारे ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना छोटा सा संपर्क, कितना टाइम लगता है खिला मारने को आदमी को, है कि नहीं? कामगार लोग दिन भर खिला मारते रहते हैं, ठाक ठाक ठुक ठुक, मगर वो भक्त के संपर्क में नहीं रहते। एक भी भक्त के संपर्क में एक छोटा सा खिला भी मार दिया तो आप महाभागवत बन जाएंगे, इतना सिंपल है काम। तो इसलिए हमें जब भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हो तो देखना चाहिए किस तरह सुंदर तरीके से वो सेवा करना चाहिए, है कि नहीं? मेरा जो ये जो प्रगटीकरण था, वो मैंने श्री चेतन चंद्र चरण प्रभु के एक प्रवचन से सुना था कि जब किसी भक्त के संपर्क में हम आते हैं तो देखते हैं कैसे हो उसका, एक हर एक भक्त का एक रुचि रहता है सेवा करने में, मगर एक अंदरूनी चीज होता है, अलग अलग प्रकार की रुचि रहती है, मगर एक चीज कॉमन होती है, वो है एक चीज सामान्य तरह से देखी जाती है कि वो भगवान के सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो करने की कोशिश करता है। जो नया नया भक्त होता है उसमें दोनों इच्छा होती है, अपनी खुद की भी भौतिक इच्छाएं होती है और भगवान की सेवा करने की भी इच्छाएं होती है, मगर धीरे धीरे ये जो भगवान की सेवा करने की इच्छाएं बढ़ती रहती है और अपने खुद के इच्छा को बाजू में रखने का जो, या अपने खुद के इच्छाओं का जो हमें हमारे हृदय में तीव्रता है, मुझे क्या मिलेगा, तो इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है और वही जीव बाद में फिर से एक मुक्त जीव बन जाता है। तो ये जो भक्त लोग हैं, हम सारे शास्त्रों के उदाहरणों से देखते हैं, मैं अभी जितना पढ़ाई कर रहा था, हाँ, ये फ्री टाइम में, तो मैंने देखा बहुत सारे चरित्र मैंने सुने, तो उसमें एक चीज सबसे कॉमन पता चलती है कि भक्त भगवान को बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपके भक्ति के अलावा, भगवान के संगति के अलावा। कितने भी भक्त हम निकाल के देखेंगे शास्त्रों में, वो शिल प्रभुपाद जैसे लिख रहे हैं कि अगर हम हमारे भौतिक इच्छाओं को बाद निकाल देते हैं और भगवान की सेवा की इच्छाएं करते हैं, तो भगवान धाम का मार्ग साफ हो जाता है। मार्ग साफ होता है मतलब क्लियर हो जाता है, तो इंग्लिश में क्लियर लिखा है इसलिए इधर साफ लिखा है उन्होंने। हाँ, साफ हो जाता है मतलब मिट जाता नहीं है, तो साफ हो जाता है मतलब अंदर जो रुकावटें हैं वो सारी निकल जाती है। स्पीड ब्रेकर है, कचरा है, ये और कुछ आता है, वो सब निकल जाता है। तो आप दूर क्या कर रहा है हमको भगवान से, वो है हमारी इच्छा कर रही है, और कुछ नहीं कर रहा है दूर भगवान से। भगवत धाम जाने का मतलब नहीं होता है कि यहां से दूर किसी चीज के ऊपर बैठ के दूर बहुत देर देर तक, हाँ, जाए भगवत धाम को जाने के लिए, ऐसा दूर नहीं है। भगवत धाम एक, यहाँ यस्य हरिदास, इधर ही भगवत धाम है, भगवत धाम उधर भी है इधर भी है। क्या हमको भौतिक जगत, भौतिक जगत मतलब हम जो इच्छाएं कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता और सेवा के अलावा, जो इच्छाएं कर रहे हैं वही भगवत भौतिक जगत है, और कोई भौतिक जगत ऐसा नाम का चीज कोई है नहीं। इसीलिए वो श्लोक जो बोलता है यहा यस्य हरेर दास, इधर ही रह के व्यक्ति मुक्त होता है, भगवत धाम जाएंगे तो मुक्त होने का प्रश्न नहीं होता है, भगवत धाम में मुक्त ही जीव है। मगर भौतिक जगत में व्यक्ति मुक्त मुक्ति का अनुभव कर सकता है जो इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हुआ है, वो यहाँ ही मुक्त है। उसको वहां जाके वो एक जाना, एक जस्ट डिटेल है, वो एक जाना उधर एक, हाँ। तो मैंने देखा कि वृत्रासुर के प्रार्थनाओं को देखा, क्या मांगते हैं वो, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम मन पुनर्भवम वा समंजस्याम विराह्य कांक्षे। क्या मांगते, कुछ नहीं मांगते, बोले ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए तो भगवान के आपके साथ संग चाहिए। जैसे एक गाय, एक बछड़ा गाय का राह देख रहा है, या पक्षी का बच्चा एक पक्षी का राह देख रहा है, उस तरह से मैं भी आपके साथ संपर्क में आके आपके साथ ही रहने का मेरा इच्छा है, और कोई भी करने का मेरा ये इच्छा नहीं है। और बाद में हम देखते हैं, मैं नाभाग महाराज को सुन रहा था, जो अम्बरीश महाराज के पिताजी हैं, वो भी इतनी सरलता से अपना जीवन जीते हैं, जंगल में अपना तपश्चर्या करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, बहुत देर से पढ़ाई करके घर पे आते, कुछ नहीं मिलता है उनको घर पे। तो एक बूढ़े से पिताजी रहते हैं, वो बोलते हैं जाओ तुम यज्ञ के जो ब्राह्मण हैं वो अलग अलग प्रकार से गलतियां कर रहे हैं, उनको आप उनकी गलतियां सुधारो, आप शास्त्र में बहुत पारंगत हो, तो क्या होगा कि आप भी उस धन को प्राप्त कर सकते हो। फिर धन करते हैं ऐसा, धन प्राप्त होता है, शिव जी आके उनकी परीक्षा लेते हैं, बोले भाई तो आप हमारा धन है, यज्ञ के बाद जो भी धन बचता है वो शिव जी का है, तो मेरा ही ये धन। तो फिर से उनको भी धन देते, बोले ठीक है। वहां पे मैं शिल राधा गोविंद स्वामी महाराज के लेक्चर को सुन रहा था, वो बोलते जैसे ही भगवान ने रखा है उस तरह हमें खुश रहना चाहिए, अलग से अपने भौतिक स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रयत्न करना ही है तो भगवान के भक्ति का स्तर हमारा जो है उसको बढ़ाने की प्रयत्न हम कर सकते हैं, मगर भौतिक स्तर में सभी लोगों को खाने पीने रहने को मिलने वाला है इस दुनिया में, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसको अपनी जरूरत को है ऐसे मिलने नहीं वाला है, ऐसा कोई है नहीं जीवन में, कोई ना कोई लाके दे देगा उसको, किसी ना किसी भगवान के पद्धति से वो उस चीज को प्राप्त कर देगा। तो नाभाग को, नाभाग उसके जो पिताजी है बोलते हैं कुछ चिंता मत करो, भगवान सबकी ख्याल कर रहे हैं, तुम इच्छा करो, ये सब नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। तो फिर से परीक्षा में पास होते हैं। फिर प्रहलाद महाराज को देखते हैं, अभी प्रहलाद महाराज के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, नरसिंह चतुर्दशी के टाइम पे, वो भी नरसिंह देव बोलते हैं आप कुछ मांगो, तो क्या बोलते हैं वो, यदि दास्यसि मे कामान वराम त्वाम वरतर्षभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वनेवरम। हे वरतर्षभ, हाँ वर देने में सबसे श्रेष्ठ, वरतर्षभ वरदराज वो ऐसे सब एक ही है, तो जो है कुछ भी वर दे सकते हैं। वरतर्षभ का मतलब ही होता है कि वो किसी भी प्रकार का वर दे सकते हैं। बुद्धिमान मनुष्य वो है भगवान को बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो श्री प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, आपने कहा मूर्ख लोग क्या मांगते रहते हैं। एक लकड़हारा था और जंगल में लकड़ी तोड़ता था, फिर वो लकड़ी का बोझा एक खंधे पे लेके जा रहा था, बहुत देर चलने के बाद वो खंधा दुखने लगा उसका, तो भगवान को प्रार्थना करते हैं भगवान कुछ मदद करो मेरी। भगवान प्रकट हो जाते, बोले क्या करूँ, बोले ये इधर बहुत कष्ट हो रहा है, इधर रखो उसको। तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, एक चीज तकलीफ दे रहा है तो दूसरी चीज मांगते हो, ज्यादा तकलीफ देना चालू करती थी। भगवान एक घोड़ी दिला दो, घोड़ी देता है, वो घोड़ी का बच्चा पैदा होता है, फिर वो बच्चे को लेके चलना पड़ता है। तो इस दुनिया के लोग ऐसे ऐसी चीजें मांगते रहते हैं भगवान को, जो दुख में और ज्यादा दुख पैदा कर सकता है। दुख औषधम तदपि दुखम, और दुख पैदा कर सकता। तो वापस भगवान को प्राप्त करने, भगवान के आज्ञा के फिर से वही चीज नहीं मांगना चाहिए। अरे ये दो वो दो, ये दो उसको दिया आपने मेरे को नहीं दिया, ये दिया उसने, उसने ये किया मेरे को भी बना दो, हीरो बना दो, ये बना दो वो बना दो, तो फिर से हम चक्कर में फंस जाते हैं। जिस चक्कर से हम छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं इच्छाओं से, वही चीजों में हम फिर से फंस जाते हैं। हाँ ये सभी भागवतों से, महाभागवतों से सीखना चाहिए। अगर हमको प्रार्थना करने को आती नहीं है तो कम से कम दूसरों ने जो किए वाली प्रार्थना है। एक भक्त मेरे को पूछते हैं प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा क्यों लिखते हैं, अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्य रलेश, हाँ सदा कामरत किचू नाही मुरगुन। बोलते हो तो शुद्ध भक्त थे, पाप नाम का जीवन चीज उनके जीवन में नहीं था, वो ऐसा क्यों लिखते हैं। तो मुझे पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगा, मगर मैंने बोला कि तुम जो बोलने नहीं वाले हो कभी भगवान को ऐसा, तो तुम्हारे लिए लिखा है, तुम तो बोलो मैं हमार जीवन सदा पापेरत। अब तो रिपीट करने में तो आता, रट्टा मारने के लिए सिखाया एजुकेशन सिस्टम ने, जो भी बोला वो करने को तैयार हो जाते हैं लोग। बंदर से आए तो बंदर से आए, चूहे से आए तो चूहे से आए, पता नहीं क्या क्या। हाँ तो बोले कल बोले गधे से आए तो हाँ बोलेंगे गधे से आए, हमको क्या करना, मार्ग दे दो बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इतना भयंकर होता है कि कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते ठीक है मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, कम से कम मैं जो लिखा हो उतना तो पढ़ो, हमारा जीवन सदा पापे रहता तो बोलो मैंने लिखा है बोलो। हमारा जीवन सदा पापे रहता गाते हो, बोलता है कितना सुंदर गा रहा हूँ मैं, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि मैं जो गा रहा हूँ, हाँ मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है, और वो बोलते हैं कितना सुंदर गा रहा हूँ मैं गाते हो। तो हम कभी ये सोच नहीं सकते जो भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे हैं कि मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है, इसलिए वो लिखते हैं और हमको बोलते हैं तुम जाके पढ़ो, पढ़ो भगवान के आगे कम से कम, ना ही मागी देह सुख विद्या धन जन, ये तो कभी बोलने नहीं वाले आप। तो हमें पता नहीं भगवान को क्या मांगना चाहिए, मगर ये शुद्ध भक्तों ने हमको बता के रखा है क्या मांगना चाहिए। बाबा हमारी प्रार्थनाएं ले लो और जैसा है वैसे जाके भगवान के आगे पढ़ो। ड्रामा करने में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है, लेकिन हम लोग भक्ति का जो ये छोटा सा कार्य कर रहे हैं श्री प्रभुपाद ये वाले, हमको भी पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, किसी को भी पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। भौतिक दुनिया में लोग जो मन में आया वो करते रहते, आज एक करते कल वो करते, हमारा इतना ही भाग्य है कि हम वो कर रहे हैं बिना जाने जो मुक्ति का मार्ग है, यही हमारी महत्व चीज है, बाकी तो हमको कुछ पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं अगर आपको मुझे कुछ वरदान देना है, यदि दास्यसी मे कामान वराम त्वाम वरतर्षभ, अगर हे वरतर्षभ आपको कुछ मेरे को देना है, कामानाम वृद्धि संरोहम भवतस्तु वरम, इस भौतिक जगत में हजारों इच्छाएं जो मन में प्रकट होती है उसको मेरे हृदय से नष्ट कीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं, क्या सुंदर लिखते हैं वो, विषय जय प्रीति होए आचाये अमार, से मत प्रीति हो चरने तुमार। क्या बोलते हैं, हाँ, यही हमारे शुरुआत था। हमारे प्रवचन के शुरुआत में हमने देखा कि बहुत सारी इच्छाएं हैं, विषय जे प्रीति होए। इतना आदमी इच्छा करते रहता है कि उसका इच्छा सोने के बाद भी खत्म नहीं होता। सोते वक्त भी अपने इच्छाओं से, स्वप्न के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहता है। इतना भयंकर इच्छाओं से ग्रस्त है वो। पूरा का पूरा खत्म हो चुका है इच्छाओं से, विषय चे प्रति, इतनी इच्छाएं हैं विषय के प्रति। कल मैं बोल रहा था आपको, चेतन चरण टू का लेक्चर सुन रहा था उसमें। हाँ, बहुत सारे लेक्चर सुन रहे थे मैं, तो उसमें भगवद गीता के ऊपर लेक्चर है। हाँ, वो क्या नाम है, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति प्रति भोगैश्वर्य प्रसाद क्रिया। तो उसमें कामात्मान स्वर्ग परा, कामात्मान स्वर्ग परा का उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि यह आत्मा जो है वो काम से, काम ही है वो। हाँ, इधर जो भौतिक जीवन, भौतिक जगत में जो आत्मा मिलता है, रहता है, वो किस क्या है, अभी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। मगर यहां आने के बाद क्या करता है वो, सिर्फ काम 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 काम। हाँ, यहां तक लोग जाते हैं 16 चैप्टर में, 16वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये, कुछ लोग बोलते हैं कि ये दुनिया जो है सिर्फ काम के लिए बनी, और कुछ काम नहीं है इधर। एक ही काम है कि काम करो, काम इच्छाओं को पूर्ति करो। ये इस एक चीज के लिए सिर्फ दुनिया बनी है। देखिए कहाँ से कहाँ चले गए भगवान, सारे काम इच्छाओं को नष्ट करने के लिए इस दुनिया को बनाया है। एग्जैक्टली अपोजिट कंक्लूजन ये लोग देते हैं। क्या है दुनिया का उद्देश्य, काम वासनाओं को पूरा करो, वही इस दुनिया इसीलिए बनाई है बस, और कुछ नहीं। ये चीज क्यों लिए बनाई भगवान ने, हमको खाने के लिए बनाई, और कुछ नहीं, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं इसका। मुर्गी हमारे लिए बनाई है, बकरा हमारे लिए बना है, किसी के लिए कुछ नहीं बना है, हमारे काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए। एक बार सोचता तक नहीं इसके पीछे क्या उद्देश्य होगा। इसलिए कामात्मा ने बोला है, आत्मा काम बन चुका है, कामात्मा ने स्वर्ग पर, उसमें कोई भेद ही नहीं है। भौतिक इच्छा और आत्मा में कुछ भेद ही नहीं, वो एक बन गया है पूरा। हाँ, हलवा है उसका, एक एक जुड़ हो गया पूरा। तो इसलिए हाँ, हमारे एक चीज हमारे तरफ से हम कर सकते हैं, इस भगवान के जो ये अलग अलग भक्त हैं, जो इच्छाएं वो कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक नहीं दो नहीं चीज नहीं, एक दो भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं। भागवतम खोलने के बाद जितने भी भक्त, जितने भी प्रार्थनाएं भगवान को कर रहे हैं, वो सारे बताते हैं, वही चीज बताते हैं। तो इसलिए सूत्र बताते हैं। हाँ, प्रहलाद महाराज सूत्र बताते हैं। वो सूत्र बताते हैं कि मेरा मन जो है वो आपकी गुण वर्णनों में मग्न हो चुका है। ये हमारे किस तरह से हम यह भौतिक इच्छाओं को पार कर सकते हैं, इसका ये मर्म यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं। क्या बताते हैं वो, क्या क्या श्लोक है वो? हाँ, वो द्विजय पर दुरत्य वैतरण्य त्वद्वीर्य गायन महामग्न चित्ता। चित्त को मग्न करना चाहिए, चित्त को खाली भौतिक इच्छाओं से निकालने के चक्कर में पड़ के फायदा नहीं है। हाँ, शिल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आप अंधकार को एक जगह से बाहर निकालने के चक्कर में मत पड़िए, आप क्या कीजिए, प्रकाश को अपने जीवन में लेके। तो वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्ता, चित्त को मग्न करने के बाद ही सारे भौतिक भौतिक इच्छाओं निकालने के, अगर हम सोचेंगे कैसे हम भौतिक इच्छाओं को निकालेंगे और उसी के बारे में सोचते बैठेंगे, वो कभी नहीं निकलने वाली है। कामात्मा ना, आत्मा के साथ चिपक गई है वो, तो इसलिए निकालने के नहीं है। क्या कर सकते हैं हम, ये प्रहलाद महाराज से सीखते हैं। त्वद्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्ता, कैसे न कैसे करके हमको जो अच्छा लगता है, हाँ जो कर सकते हैं, जो जो भी समझ सकते हैं, जिसको प्रयत्न करके आत्मसात कर सकते हैं, ऐसे सारे भगवान के बारे में जो भी इच्छाएं हम लोग कर सकते हैं, जिनके अंदर रत हो सकते हैं। हमारे गुरु महाराज को एक बार पूछा कि आपका ये जो आध्यात्मिक उन्नति का क्या सीक्रेट है, एक शब्द में बताइए। उन्होंने बोला एब्जॉर्प्शन। मैं सिर्फ, या हर एक व्यक्ति जिसको भी भक्ति में प्रगति करना है उसको भगवान के साथ अपना जो भी संबंध है, सेवा के द्वारा, चर्चा के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, सुनने के द्वारा, जो भी जिस ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम, तो हर एक हमने सारे जो अलग अलग प्रकार के शरीर के भाग है, सूक्ष्म है या स्थूल है, कायन वाचा मन से इंद्रियाई वा बुद्धि आत्मा वा, सबको मग्न चित्ता जब एब्जॉर्प्शन में हम करते हैं तो भौतिक इच्छाएं कब कहाँ भाग जाती है पता भी नहीं चलता, मगर वो इतना आसान काम नहीं है। मग्न चित्त हमारे मन को भगवान के साथ सेवाओं में मग्न करते हैं तो उल्टे सीधे इच्छाओं से हम मुक्त होने की अभिलाषा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जो मुझे छोटा बहुत इधर समझा श्री प्रभुपाद के प्रपोर्ट में, हालांकि दो चीज़ें लिखते हैं, प्रभुपाद मुक्त जीव का कृपा होना चाहिए और हमारी भौतिक इच्छाओं को नष्ट करना चाहिए, तो मुक्त जीवों ने हमारे ऊपर कृपा ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी हमारे साइड का काम बाकी है, इसलिए मैंने उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश की। कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिए, मैं इस स्तर पर नहीं हूँ जिस स्तर पर मैंने बोला है, मगर इस बोल के शायद एक दिन समझ जाने की अभिलाषा है, इसलिए बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समवेत कौर भक्तवृंद की जय।